दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि सभी देवताओं को यज्ञ का फल मिलेगा लेकिन शिव जी को नहीं मिलेगा। कह दिया। लेकिन सरस्वती जी अभी भी बैठी है, है? सरस्वती हम भक्तों को कह रही है आप टेंशन मत लो, दक्ष प्रजापति ने श्राप नहीं दिया। बोले दक्ष प्रजापति के कहने का अर्थ क्या है? बोले देवानाम यजन समये देवे सहभागम न लभता किंतु तेव्य पूर्वम एव लभता। बोले दक्ष प्रजापति ने क्या कहा, उसको दोष को गुण में कैसे बदला? बोले दक्ष प्रजापति ने कहा कि देवताओं को यज्ञ, देवताओं के साथ शिव जी को यज्ञ का फल भाग नहीं मिलेगा, किंतु उस देवताओं के पहले ही शिव जी को यज्ञ का फल भाग मिल जाएगा। ये सरस्वती का अर्थ है। मान लो कोई पूछे सरस्वती देवी को ऐसा क्यों, तत्र हेतु, इसका कारण, इसका कारण देव गणो अधमो यस्मात, क्योंकि ये देवता जो है सब लोग अधम है, ये जितने भी देवता हैं कुछ ना कुछ इच्छा के कारण यज्ञ में भाग लिए हैं, इसलिए नहीं अधमे सह, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं नहीं अधमे सह भोजन उचितम, अधमों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, और ये जो देवा है वह अधम है, इसलिए हे शिव जी आप देवताओं के साथ भोजन मत करना, देवताओं के पहले ही कर लेना। ये श्राप है? ये श्राप नहीं, ये तो सबसे बड़ा वरदान है, अनुग्रह है, ये सारस्वत अर्थ है। लेकिन हमें जो ग्रहण करने लायक सिद्धांत है नहीं अधमे सह भोजनम उचितम। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अधमों के साथ कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा अधमों के हाथ से बना हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप जैसे लोगों के हाथ का भोजन खाते हो आप वैसे हो जाते हो, यदि पापियों के हाथ का भोजन खाओगे आप पापी, पाप करना ही है, होगा ही, और यदि महात्माओं के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाओगे तो आप महात्मा हो जाओगे। इसलिए कभी भी हमें बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर माने ये होटल दुकान, क्या पता वह शूद्र है अधम है, क्या सोचकर किस भावना से बनाते हैं, है? वो खुद मांस खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। कभी भी शास्त्र में कहा गया है मां बहन और पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन अमृत माना जाता है, अमृत जिस बलवर्धक होता है, और रास्ते में किसी होटल का खाएंगे तो अमृत नहीं, वो कचरा है। वैसे तो अशुद्धि होती है, बाहर से दिखता है पानी गंदा, ये गंदा वो गंदा, वो तो दिखता है, लेकिन सूक्ष्म प्रभाव की बात हो रही है। वो लोग जो सोचकर भोजन बनाते हैं वो सोच हमारी सोच में आ जाती है, ये सत्य बात है। भोजन बनाते समय, रोटी या सब्जी बनाते समय बनाने वाला जो सोचता है वो सूक्ष्म प्रभाव खाने वाले में आ जाता है। कभी कभी कुछ माताएं कहती हैं हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हम तो अच्छा संस्कार दे रही हैं, आपके बच्चे दूसरों के हाथ का बनाया हुआ खाते हैं, और जब वो होटल वाले खिलाते हैं तो क्या सोचकर, जब कोई मां बहन या पत्नी बनाती है तो क्या प्रेम भाव होता है कि मेरे पति खाएंगे मेरा बेटा खाएगा, शुद्ध भाव होता है, और होटल वालों का क्या भाव होता है, पैसे मिलेंगे हैं? हम कम चीज देंगे और ज्यादा ले लेंगे, कपट भाव होता है, काम वासना का भाव होता है, और वह भाव बच्चों में आ जाता है, हम में आ जाता है। इसलिए भोजन पवित्र लोगों के हाथों से बना हुआ ही खाना चाहिए, और उसमें भी भक्तों के हाथों का भोजन यदि मिल गया तब तो बात ही कुछ और है। भक्तों के तो घर पर जा जाकर फिर यह नहीं देखा जाता है भक्त शूद्र है चांडाल है, भक्त कैसे भी परिवार में जन्म लिया है, किसी भी परिवार में मांस खाने वाले कुत्ते खाने वाले चांडाल के परिवार में भी यदि किसी ने जन्म लिया है परंतु विष्णु की भक्ति करता है तो उसके घर पे जा जाकर खाना चाहिए। और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी यदि कोई वेद शास्त्र का आचरण नहीं करता है तो उसके घर पर कभी भी नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है। क्योंकि इस संसार में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। जन्म ब्राह्मण परिवार में हो गया और कार्य चांडाल के हैं, शूद्र के हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। कर्म से, गुण कर्म विभागश, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे? गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। ये वर्ण और आश्रम गुण और कर्म के अनुसार है। आज तो कोई जन्म लेता है ब्राह्मण परिवार में, जनोई पहन लेता है, मैं ब्राह्मण, 2 रुपये का धागा पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। ब्राह्मणों के गुण क्या है? शास्त्र में लिखा है, शम दम तप शोच शांति ऊर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम है। आज के ब्राह्मणों में देखा गया इनमें से कुछ नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो वो है जिसमें पवित्रता है, शम दम तप शौच शांति ऊर्जा ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, वो है ब्राह्मण। कहां से कहां चला गया है? हां, नहीं अधमे सह भोजनम उचितम, भोजन जो है अधमों के वहां नहीं करना चाहिए, भक्तों के वहां भोजन करना चाहिए। भक्तों के द्वारा बना हुआ यदि हम खाते हैं तो पवित्रता आती है, भक्ति आती है। इसलिए भोजन खाने में, ग्रहण करने में ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति शिव जी को श्राप दिए और मैत्र ऋषि कहते हैं, निषिध्यमान सदस्य मुख्ये दक्षो गिरित्राय वृजुस्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम विवृद्ध मन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतम। इस प्रकार जब दक्ष प्रजापति शिव जी को श्राप दे रहे थे, ब्रह्मा इत्यादि अनेक ऋषि मुनियों ने कहा, नहीं आप श्राप मत दो, क्रोध मत करो, श्राप मत दो। इस प्रकार से क्रोध करना, श्राप देना उचित नहीं है। निषिद्य माने शाप दानम निंदनम, शाप देना बहुत बुरी चीज है, गाली देना बहुत बुरी चीज है। बहुत बहुत लोगों के रोकने पर भी दक्ष प्रजापति रुके नहीं, कारण कि दक्ष प्रजापति को क्रोध हो गया। मन्यु विवृद्ध मन्यु, यहां पर मैत्र ऋषि मन्यु शब्द कह रहे हैं, मन्यु अर्थात क्रोध। क्रोध को मन्यु कहा जाता है, क्यों? क्योंकि क्रोध जो है मन से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होने के कारण क्रोध को मन्यु कहते हैं, मन से। कैसे उत्पन्न मन से होता है? मन में कुछ इच्छा होती है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध होता है। ज्ञायते विषयान पुंस संगस्ते शुप जायते संगस्ते जायते काम कामात क्रोधो भी जायते। गीता में भगवान कहते हैं, मन में कुछ विषय का ध्यान करते हैं और ध्यान करने से उस वस्तु की कामना इच्छा हो जाती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो कामात क्रोधो भी जायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। दक्ष प्रजापति को क्रोध उत्पन्न हुआ। भक्तों, ये क्रोध बहुत बुरी चीज है। ये जब उत्पन्न होता है तब व्यक्ति अपना तो अपनी हानि तो कर ही लेता है परंतु दूसरों की भी हानि करता है क्रोध। और गीता में तो भगवान ने सीधा कहा है, ये क्रोध जो है नरक में जाने का सीधा रास्ता है। यदि क्रोध जीवन में हो रहा है तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक में जाने के सीधे द्वार हैं। तस्मात इसलिए हे अर्जुन ये तीनों को त्यजित त्याग देना चाहिए, त्यागना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध हुआ और क्रोध के कारण जगाम। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, क्रोध हुआ और बहुत क्रोध हुआ, एक ही श्राप दिया और श्राप देकर जगाम वहां से चले गए। उस सभा को छोड़कर दक्ष प्रजापति चले गए, आए थे यज्ञ वज्ञ कुछ किए नहीं, केवल शिव जी को भला बुरा कहे श्राप दिए वहां से चले गए। हे कौरवयम, मैत्री मुनि ये कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते विदुर जी को संबोधन दे रहे हैं। कौरवयम, हे विदुर जी संबोधन क्यों दे रहे हैं? कौरवयम, विदुर जी को संबोधन देकर याद करा रहे हैं कि हे विदुर जी, जैसे आप हस्तिनापुर के द्वार को अपना धनुष रखकर चले गए थे, जैसे आप हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए, वैसे ये दक्ष प्रजापति इस सभा को छोड़कर चले गए। विदुर जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जिस सभा में विदुर नीति में एक नीति है, जिस सभा में अपना सत्कार नहीं होता है उस सभा में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तुरंत विदुर जी वहां से निकल गए और जहां पर ऐसा लगे कि अब हमें क्रोध उत्पन्न होगा, एक विदुर नीति है, जहां पर ऐसा लगे कि अब क्रोध होने वाला है तो तुरंत उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो क्रोध यदि मुंह से प्रकट हो गया तो उसमें सबकी हानि होने वाली है। विदुर जी को क्रोध हुआ, ज्यादा कुछ नहीं किया, विदुर जी छोड़कर चले गए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति चले गए, परंतु दक्ष प्रजापति चले गए, दक्ष प्रजापति के इस श्राप से, इस दोषों के वर्णन से शिव जी को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो शांत बैठे रहे, परंतु शिव जी के शिष्य नंदी जी से नहीं रहा गया। बाजू में शिव जी के साथ ही नंदी जी बैठे थे, नंदी जानते ना, विज्ञाय शापम गिरिशानु अग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित। नंदी को पता चला कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, नंदी को क्रोध उत्पन्न हुआ, रोष कषाय, नंदी जी की आंख लाल हो गई, रक्त वर्ण और होठ कांपने लगा। अनवोतम तत् अवच्यताम द्विजा, नंदी जी क्रोधित हुए और क्रोधित होकर नंदी जी श्राप देने लगे। देखो इस प्रसंग में दो लोग क्रोधित हुए, एक दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए और एक नंदी क्रोधित हुए। दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर अपना अपयश बढ़ाए और नंदी जी क्रोधित होकर अपना यश बढ़ाए, दोनों क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति अपने लिए क्रोधित हुए और नंदी जी जो हैं वे अपने लिए नहीं, अपने गुरु के लिए क्रोधित हुए। भक्तों यहां पर बहुत सुंदर उपदेश है, इस संसार में क्रोध आता है, क्रोध को कोई दबा नहीं सकता है, परंतु हमें कभी भी अपने लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध करना चाहिए दूसरों के लिए। कैसे? यदि कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो तुरंत हमें क्रोध करना चाहिए, आप उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? यदि कोई हमारे गुरु के विषय में बोल रहा हो तो तुरंत बोलना चाहिए, हमारे गुरु के विषय में कुछ नहीं बोलना। यदि भगवान के विषय में, राम और कृष्ण के विषय में कुछ बोल रहा हो तो तुरंत क्रोध करना चाहिए। ये क्रोध एक ऐसी वस्तु है जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया था, हनुमान जी जैसे महान भक्त भी क्रोध से मुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रोध किया किस पर? लंका वासियों के ऊपर। हनुमान जी ने क्रोध किया, लंका में आग लगा दी, लंका को जला दिया। इस प्रकार क्रोध होना चाहिए, क्रोध होता है, लेकिन वह क्रोध हमारे लिए न करते हुए हमें जहां निंदा हो रही है, जहां ईर्ष्या हो रही है, जहां वैष्णवों का, गुरुओं का और भगवान के प्रति द्वेष हो रहा है, उस जगह पर हमें क्रोध करना चाहिए। परंतु जगत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, है? अपने लिए कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत क्रोध करते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, और दूसरों के विषय में जब कुछ बोला जाता है, निंदा हो रही है, तो हम मजा लेते हैं, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ वो कैसा है। परंतु हमें भक्त बनना है नंदी जी की तरह, कभी भी दूसरों के दोषों को ग्रहण नहीं करना है। तत्र दक्षम शपति साधेश त्रिवी। अब नंदी जी क्रोधित हो गए, अपने गुरु के अपमान को सहन नहीं कर पाए, नंदी जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर अब नंदी जी श्राप दे रहे हैं। सुनिए, ये एतद मर्त्यम उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रोही। ये मर्त्य, ये मृत्यु लोक में रहने वाले मरण धर्मा, ये भगवती, भगवान शिव के, ये शिवजी जो है साक्षात भगवान के अंश हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, परंतु ये भगवान के प्रभाव को समझ नहीं पाए। दुर्यति यज्ञ पृथक दृष्टि तत्वत विमुख भवेत। ये दक्ष, क्योंकि दक्ष ने शिव जी का, हमारे स्वामी का अपराध किया है, मैं दक्ष प्रजापति को श्राप देता हूं कि ये दक्ष प्रजापति तत्व से विमुख हो जाए। तत्वतः विमुखम भवेत। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ होता है परमार्थत्वात्, भगवत स्वरूपत्वात्। ये कभी परमार्थ को समझ नहीं पाएगा, ये कभी भी भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। नंदी जी का श्राप है, जो लोग भगवान शिव का, शिव जी का अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, वो कभी भी तत्व को नहीं समझ पाते हैं। तत्व क्या है भक्तों? इस संसार में तीन तत्व है जिसे परम तत्व कहा जाता है, और प्राय इस संसार में लोग तत्व के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि श्राप लगा है नंदी जी का, तत्वतः विमुख भवेत। हम सबको तत्वज्ञ बनना है, तत्व के बारे में जानना है। तत्व क्या है? बोले वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। इस संसार में जितना भी ज्ञान है भगवान के विषय में, जो भी ज्ञान है वो तीन तत्व में है, और वो तीन तत्व क्या है? वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। भगवान के तीन तत्व हैं, भगवान के तीन स्वरूप हैं, और जो लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं वही लोग भगवान के तीन स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं और जीवन में उतारते हैं। भगवान के तीन स्वरूप कौन से हैं? ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप। इस संसार में कुछ लोग भगवान को केवल ब्रह्म मानते हैं, भगवान माने ब्रह्म, निराकार, ज्योति। जो लोग भगवान को ब्रह्म मानते हैं, निराकार मानते हैं, ज्योति मानते हैं, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं वो गलत है, परंतु उनका ज्ञान अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान मात्र ब्रह्म ही नहीं है, भगवान ब्रह्म के साथ साथ परमात्मा रूप में भी है, निराकार रूप में भगवान, निराकार रूप में ब्रह्म इस संसार के कण कण में है, और वही परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में है, और वही भगवान के रूप में अपने साकार स्वरूप में सगुण स्वरूप में अपने धाम में विराजमान है। भक्तों, इस संसार में कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, केवल ज्योति ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कुछ लोग केवल परमात्मा परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, परंतु ये भगवान को इस प्रकार से समझने वाले अपूर्ण है, अज्ञानी है, उसका ज्ञान अपूर्ण है। वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी है जो भगवान के इन तीनों तत्वों को समझता है। कौन से तत्व को? ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को और भगवान तत्व को। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूंगा जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। मान लो एक गांव है जो शहर से बहुत दूर है, और सरकार ने उस गांव में, उस गांव से थोड़ा दूर रेलवे की, ट्रेन की पटरी बिछाई। रेलवे की पटरी होती है ना, वहां पर रेलवे शुरू करने वाले थे। तो उस गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर सरकार के द्वारा ट्रेन की पटरी बिछाई गई, और गांव वालों ने ऐसा सुना कि हमारे गांव में ट्रेन आने वाली है, रेलवे आने वाली है। गांव में रहने वाले किसी को नहीं पता था कि ट्रेन कैसी होती है, रेलगाड़ी कैसी होती है, किसी को नहीं पता था। और दूसरे दिन उस रेलगाड़ी का शुभ मुहूर्त था। अब बहुत खेती का समय था, कोई गांव से निकल नहीं सकता है और देखना है रेल कैसी होती है। तो सभी गांव वाले आपस में मिले और गांव वालों ने तीन लोगों को चुना, तीन लोगों को चुना कि आप लोग जाना और देखकर आना रेलवे रेलगाड़ी कैसी है, फिर हमको आकर बताना। तीन लोग तैयार हो गए। दूसरे दिन एक व्यक्ति बहुत अधीर था, धीरता नहीं थी, वो रात को ही निकल पड़ा। और जैसे ही उस रेलगाड़ी के नजदीक गया, रात को तो आप जानते हैं रेलगाड़ी में लाइट होती है, दूर से आप रेलगाड़ी को देखोगे तो केवल लाइट दिखती है, प्रकाश। तो रात को गया और रेलगाड़ी आ रही थी और दूर से प्रकाश दिखा, वो रुक गया, प्रकाश, वहां से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा, आप रेलगाड़ी देखकर आए? बोले हां। बोले रेलगाड़ी कैसी है बताओ? बोले प्रकाश, ज्योति, ब्रह्म ज्योति। कुछ गांव वालों ने इस पर विश्वास कर लिया, रेलगाड़ी माने प्रकाश। बात गलत नहीं थी, बात सही थी, क्योंकि रेलगाड़ी में प्रकाश होता है, परंतु यह बात अपूर्ण थी। दूसरा पहुंचा, दूसरा जब पहुंचा तब थोड़ा थोड़ा सवेरा हो गया था, प्रकाश आ गया था, सूर्य देवता। तो उन्होंने दूर से देखा, रेलगाड़ी एक डिब्बे के समान है, बोले डिब्बा, वहां से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा, रेलगाड़ी कैसी है? रेलगाड़ी माने डिब्बा। तीसरा व्यक्ति गया, तीसरा थोड़ा बुद्धिमान था, तीसरा गया रेलवे प्लेटफॉर्म पर, गया देखा कि रेलगाड़ी में लाइट भी है, ये रेलगाड़ी डिब्बे के समान भी है, और साथ ही साथ रेलगाड़ी के अंदर बहुत सुंदर कुर्सी है, सीट है, खिड़की है, पंखे हैं। और तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे को पूछा, रेलगाड़ी कैसी है? तीसरे ने कहा, रेलगाड़ी में लाइट है, प्रकाश है, वो डिब्बे के समान है, और साथ ही साथ उसमें सीट भी है, खिड़की है, पंखे हैं। अब भक्तों, तीन लोग उस गांव में आए, एक ने कहा रेलगाड़ी अर्थात प्रकाश, दूसरे ने कहा रेलगाड़ी अर्थात डिब्बा, और तीसरे ने कहा रेलगाड़ी अर्थात प्रकाश, डिब्बा और सीट, खिड़की, पंखे, सब कुछ। अब आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर सत्य सत्य बताइए, ये तीन लोगों में से पूर्ण ज्ञान किसका है? पहले वाले का, दूसरे वाले का, या तीसरे वाले का? आपको क्या लगता है, शुद्ध कौन है? क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तीसरा, पहला या दूसरा? आप उंगली से इशारा कर सकते हैं। तीसरा, तीसरा, सब लोग तीसरा कह रहे हैं, बुद्धिमान तीसरा है। क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में भगवान को कुछ लोग जाने हैं, तो भगवान को कुछ लोग केवल ब्रह्म के रूप में, ज्योति के रूप में जानते हैं, वो गलत नहीं लेकिन अपूर्ण है। उसका भगवत साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कुछ लोग परमात्मा रूप से जानते हैं, इसका साक्षात्कार अपूर्ण है। परंतु जो लोग भगवान को साकार स्वरूप मानते हैं, परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप तीनों मानते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी है। पूर्ण इसे कहते हैं तात्विक ज्ञान, तत्वतः। लेकिन फिर भी प्रश्न हो, ये तीनों में से मूल कौन है? कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, साकार भी है, लेकिन ब्रह्म से ही भगवान की उत्पत्ति हुई है, इसलिए निराकार को मानना चाहिए, निराकार का ध्यान करो। मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूं, आप साधारण बात समझिए, एक छोटी सी बात। साकार से निराकार प्रकट होता है कि निराकार से साकार प्रकट होता है? आप वेद शास्त्र को छोड़ो, अपनी बुद्धि से समझो। आप बताइए, ये फोकस मेरे सामने, ये लाइट, ये फोकस से प्रकाश उत्पन्न होता है कि प्रकाश से फोकस बना? आप इतना बताइए मुझे, ये बल्ब से प्रकाश बना या प्रकाश से बल्ब बना? कुछ समझ में आ रहा है? हैं? प्रकाश से बल्ब बनता है कभी? बल्ब में से प्रकाश निकलता है ना? ठीक उसी प्रकार साकार में से निराकार ब्रह्म प्रकट होता है, साकार में से ही परमात्मा प्रकट होते हैं, साकार भगवान में से ही ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। इसलिए ये तीनों तत्वों में मूल तत्व जो है वह है भगवान का साकार स्वरूप, सगुण साकार द्विभुज श्याम सुंदर बजेंद्र नंदन कृष्ण का जो स्वरूप है, ये सबसे उत्तम और सबसे विशेष स्वरूप है। इसलिए साकार स्वरूप की उपासना करना, यही सबसे बड़ा साधन और यही सबसे बड़ी भक्ति है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार यहां पर सबसे शुद्ध और सबसे पूर्ण बात यह है कि आपको इसी जन्म में सुखी होना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के साकार स्वरूप की पूजा कीजिए। और साकार स्वरूप भगवान का कौन सा है? कृष्ण का, राम का। आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, राम की भक्ति कीजिए, निश्चित संसार में जितने भी लोग हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहां पर नंदी जी ने श्राप दे दिया कि दक्ष प्रजापति तत्व से तत्वत विमुख भवेत, ऐसे तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। तब मानो कोई नंदी जी को कहे, ठीक है दक्ष प्रजापति तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा, लेकिन कभी कभी भगवान के भक्त सत्संग करते हैं और उसे सत्संग में से तत्व ज्ञान मिल गया, तो यदि दक्ष प्रजापति को सत्संग में जाकर तत्व ज्ञान, क्योंकि यहां पर सत्संग हुआ आपको तत्व ज्ञान मिला, ऐसे सत्संग में जाकर दक्ष प्रजापति ने तत्व ज्ञान ले लिया तो आपका श्राप विफल जाएगा। बोले नहीं, दूसरा श्राप दिया, गृहेशु, मैं श्राप देता हूं कि ये दक्ष प्रजापति गृह में ही रहे, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे। बोले गृह में रहना कोई पाप है? गृह में रहना कोई बुरी चीज है? बोले हाँ, गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ आश्रम जो है अंधेरे कुएं के समान है। वो तो जो गृहस्थ आश्रम में है वही जानते हैं, प्राय जो जिसकी शादी हो गई वो कहते हैं आप शादी मत करना, शादी मत करना, फंस जाओगे। तो तू क्यों फंसा? दूसरे को उपदेश देते हैं शादी मत करना, शादी मत करना, खुद ने क्यों कर ली? इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, हितवात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतोयम हरिमाश्रयेत, ये घर जो है गृह आश्रम अंधेरे कुएं के समान है। आपने कभी अंधेरा कुआं देखा, अंधा कुआं? गांव में होता है, गांव में हर एक प्रत्येक गांव में कुआं होता है, कुएं में से पानी निकाला जाता है। फिर जब पानी कुएं में खत्म हो जाता है तो फिर वहां कोई आते जाते नहीं है, इसलिए कुएं के आजू बाजू में घास उग जाते हैं और घास फूस उग जाते हैं, कुएं को घेर लेते हैं और फिर पता नहीं चलता है वहां कुआं है या नहीं, तो वहां हरी हरी घास उग जाती है। और कभी कभी क्या होते, भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी को तो आप देखे होंगे, भेड़ बकरी रास्ते में चरती रहती हैं, वो घास खाती रहती हैं, वो भेड़ बकरी देखती हैं वहां कितनी हरी हरी घास है, है? जिसकी शादी नहीं हुई है ना, उसे ऐसा ही लगता है कितना हरा हरा है, है? शादी करने के बाद तो बहुत आनंद आएगा, वो भेड़ बकरियों को ऐसा ही लगता है वहां कितनी हरी हरी घास है, हम खाएंगे इसमें आनंद आएगा। वो भेड़ बकरी जाते हैं उस हरी हरी घास के पास, जैसे ही उस हरी घास को खाने के लिए अपना मुंह डालते हैं, वैसे वहां हरी घास नहीं, वहां तो कुआं है, धड़ाम करके उस कुएं में गिरते हैं और सिर के बल गिरते हैं उस अंधेरे कुएं में। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि नहीं? हम सोचते हैं कि शादी करेंगे आनंद आएगा, मजा आएगा, और जैसे ही शादी हो जाती है तब पता चलता है यार नहीं किया होता तो अच्छा था, है? गिरने के बाद ही तो पता चलता है, गिरने से पहले किसको पता चलता है? गिरते हैं उस अंधेरे की, फंस जाते हैं और फिर तड़पते हैं उसमें, दुखी होते हैं। अब देखिए गृह आश्रम में, गृहस्थ में कितना दुख है, कमाना है, ये करना, वो करना, ये झंझट मारी, वो झंझट मारी, और जिसने शादी नहीं किया ब्रह्मचारी को क्या तकलीफ है? हमारे नंद किशोर प्रभु बैठे हैं, क्या ब्रह्मचारी कोई टेंशन, शाम को क्या भोजन मिलेगा इसकी भी चिंता इनको नहीं है, और गृहस्थों को तो एक साल का राशन लाकर रखना पड़ता है, गेहूं लाओ, ये करो ये करो। ये नंद किशोर जी भगवान को आश्रित है, भगवान जो खिलाएंगे खाएंगे। गृह अंधकूपम, अंधेरे कुएं में फंसे हैं, फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, अंधेरे को एक, ये जो भी गृहस्थ हैं समझ लो अंधेरे कुएं में फंसे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से महात्मा लोग आते हैं और कुएं के ऊपर खड़े रहते हैं, भाई साहब बाहर निकलो, और इस कुएं में फंसे हुए गृहस्थों को निकालने के लिए रस्सी फेंकते हैं, ये लो रस्सी और निकलो। ये लोग गृह में इतने फंस जाते हैं कि रस्सी की ओर ध्यान ही नहीं देते। यदि ये गृह में फंसे रहने वाले लोग उस रस्सी को पकड़ लें तो तुरंत उसका उद्धार हो सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु यहां महात्मा आते हैं कहते हैं भाई फंसे हुए हो, दुखी हो, ये रस्सी पकड़ लो, बाहर निकलो, पकड़ लो, बाहर निकलो। ये लोग रस्सी पकड़ते नहीं है। आप लोग को रस्सी पकड़ना है, है? पकड़ना है। वो रस्सी क्या है जानते हैं? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
ये रस्सी है और इस रस्सी पर 108 मोती है, है? और हम आप सबको ये रस्सी देकर जाएंगे, जिस रस्सी से, जिस माला से, है? आप लोग इस गृहस्थ आश्रम में ऊपर उठकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो नंदी जी ने श्राप दिया गृहेशु, गृह आश्रम में फंस जाए, तो मानो कोई कहे नंदी जी को कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो गृह आश्रम में फंस जाए, गृह आश्रम तो बहुत अच्छा है, गृहाश्रम गृहस्थ आश्रम में ही, यदि दशरथ जी गृहस्थ आश्रम में नहीं होते तो राम का जन्म कैसे हुआ होता, देवकी और वसुदेव का विवाह नहीं हुआ होता तो कृष्ण कैसे आए होते। गृहस्थ आश्रम भी भगवान की प्राप्ति करने के लिए अच्छा है। अब देखिए दोनों आश्रम अच्छे हैं अपने अपने स्थान पर, एक है गृहस्थ आश्रम, एक है ब्रह्मचारी आश्रम। ये दोनों आश्रम में क्या अंतर है आपको संक्षिप्त में बता दूं, यदि किसी को ब्रह्मचारी बनना है हमारे नंद किशोर प्रभु की तरह तो वो भी हमारे साथ मुंबई आ सकते हैं, हम उनको पूरे जीवन भर साथ में रखेंगे, गुरु कथा सुनाएंगे और सुनाते रहेंगे। तो ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम में अंतर क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम ऐसा है, मान लो यहां से आपको 10 किलोमीटर दूर कहीं मंदिर में जाना है, बूढ़ा केदार ना, कहीं जाना है मंदिर में, तो आपके पास दो साधन है, एक तो मोटरसाइकिल और दूसरा है ट्रक। आपके पास यदि मोटरसाइकिल है तो एक किक मारेंगे और सीधा, यदि ट्रैफिक भी है, यदि बहुत ट्रैफिक जाम है तो बीच में से कैसे भी करके निकाल कर आप मंदिर में तुरंत पहुंच जाएंगे है? और लेकिन आपके पास ट्रक है और ट्रक को लेकर जाना है, ठेले को लेकर है, तो उसे चलाना है, डीजल भरना है और उसमें भी साइड भी देखना है कि टायर नीचे न चला जाए, और ट्रैफिक जाम हो गई तो फिर खड़े रह जाना, समय लग जाता है। वो मोटरसाइकिल लेकर तुरंत पहुंच जाएगा और ट्रक वाला भी पहुंचेगा, गृहस्थ भी पहुंचेगा, लेकिन उसको समय लगेगा है? इतना अंतर है। ये दोनों में विशेषता भी है और दोनों में दोष भी है। ये ब्रह्मचारी आश्रम वाला तुरंत मोटरसाइकिल मतलब तुरंत पहुंच गया, लेकिन उसमें दोष क्या है? मोटरसाइकिल कभी भी गिर सकती है, कभी भी स्लिप हो सकती है। गिरा तो गया, ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा भी कुछ 19-20 हो गया है? थोड़ा भी आचरण भ्रष्ट हो गया तो उनका जीवन बिगड़ गया। सफेद चद्दर में यदि एक भी दाग आ गया तो तुरंत दिख जाता है। और गृहस्थ आश्रम में भले थोड़ा समय लग जाता है परंतु कोई भय नहीं, एक्सीडेंट का भय नहीं। एक्सीडेंट हुआ तो सामने वाले को तकलीफ, ट्रक वाला तो आराम से बैठा है। मारुति कार का एक्सीडेंट हुआ तो मारुति कार बिगड़ेगी, तो वैसे दोनों आश्रम में तो गृहस्थ आश्रम अच्छा है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, गृहस्थ आश्रम की निंदा क्यों कर रहे हो? बोले गृहेशु कूट धर्मेशु, गृहस्थ आश्रम अच्छा है परंतु यदि गृहस्थी में रहकर जीवन जीने आया तो प्रायः देखा गया है गृहस्थियों में जो गृहस्थी है कूट धर्मेशु, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कूट धर्म। कूट धर्म का अर्थ होता है गलत धर्म। इस संसार में देखा गया है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कुछ लोग बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं और उसमें कितना झूठ बोलते हैं। गृहस्थी चलाने के लिए बिजनेस करो उसमें झूठ बोलना है, गृहस्थी चलाने के लिए खेती करो इसमें कितने जीव जंतुओं का वध करना है, मारना है, कूट धर्म है। गृहस्थी में कितना अधर्म है, कितना पाप है, तो इस प्रकार वो गृहस्थियों में फंस जाए। और इतना ही नहीं, गृहस्थी में वह आसक्त तो हो जाए, गृहस्थियों में भी यदि कोई व्यक्ति कितना भी पाप करे, झूठ बोले, परंतु अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देता है तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। आप जो भी पैसे कमाते हो उनमें से कुछ हिस्सा आप भगवान को दान कर देते हो तो बचा हुआ पैसा, आपकी संपत्ति शुद्ध हो जाती है। तो यदि आप अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण करते हो तो वह कर्म शुद्ध हो जाते हैं। तो गृहस्थी यदि कर्म फल अर्पण कर दे शुद्ध हो जाएगा। बोले मैं तीसरा श्राप देता हूं, आसक्त, गृहस्थी में आसक्त रहेंगे और ऐसे आसक्त रहेंगे ग्राम्य सुख इच्छया, विषय भोग को भोगने में ही पड़े रहेंगे और कभी भी वेद शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे। कर्म तंत्रम वेदवाद विपन्न धी, वो वेदों में जो भी लिखा है, वेदों में बहुत सारे कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, वेदों में सब कुछ दिया हुआ है। वेदों में आपको सुखी होना है, आपको नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, सब के बारे में दिया गया है। तो संसार में कुछ लोग वेदों को पढ़ते हैं परंतु वेदों का सार है भक्ति, परंतु वेदों का सार जो भक्ति है उसे न पढ़कर वेदों में से कर्मकांड मार्ग को स्वीकार करते हैं, कर्मकांडी बन जाते हैं और तुच्छ स्वर्ग भोगने की और इस संसार के तुच्छ भोग भोगने की लालसा से वो वेदों का सहारा लेकर कर्मकांड में फंसते हैं। इस संसार में वेदों का निर्माण ये तुच्छ भौतिक सुख के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, परंतु कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग पहले तो इस संसार में कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं है, और कुछ लोग भगवान को मानते भी हैं तो कहते हैं हे देवी देवता, हे प्रभु, आप मेरे पर कृपा करो और मुझे इस साल 10-15 लाख रुपया कमा लूं, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान की भक्ति करते हैं तो मांगते क्या है? हे प्रभु मेरे पर कृपा करो, मुझे 2-3 बच्चे हो जाए। हे प्रभु कृपा करो, मेरी नौकरी लग जाए। हे प्रभु मेरे पर कृपा करो, गाड़ी बंगला मिल जाए। इसके लिए यज्ञ करते हैं, मन्नत रखते हैं, न जाने कुछ ना कुछ कर्म कांड करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये श्राप है नंदी जी का। वास्तव में हम सबको बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमानी किस में है? इस संसार के सभी भौतिक तुच्छ सुख को भूलकर छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त करने का रास्ता तय करना। सबसे पहले यह जानिए, इस जगत में हम लोग दुखी हैं तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है यह जगत। हम ये आत्मा ये संसार का जीव नहीं है, ये भगवान के धाम में रहने वाला व्यक्ति है, परंतु हम लोग इस जगत में फंसे हैं। और भगवान ने गीता में कहा दुखालयम शाश्वतम, ये जगत मैंने जेल बनाई है, इस जेल में सब लोग सजा भुगत रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि इस जेल में रहकर, इस पृथ्वी में रहकर हम सुखी हो जाएंगे, कभी हो नहीं सकते हैं। और यहां रहकर भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? गाड़ी बंगला नौकर चाकर पैसे। कुछ लोग और बुद्धिमान है तो स्वर्ग की कामना करते हैं, परंतु सब लोग मूर्ख हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाकर भी व्यक्ति तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम, गीता में कृष्ण कहते हैं स्वर्ग बहुत विशाल है, स्वर्ग में बहुत सुख है, परंतु क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, एक ना एक दिन स्वर्ग से भी इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। फिर से पुनरपि जननी जठरे शयनम, मां के गर्भ में आकर दुख भोगतना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर लेना यह भी सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। वास्तव में हमें नित्य सुख चाहिए, हमें वास्तविक आनंद चाहिए, तो हमें इस दुनिया को छोड़कर भगवान के धाम में जाना होगा। जब तक भगवान के धाम में नहीं जाएंगे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और यदि हम सोचे कि यहां पर रहकर ये मिल जाए ये मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। इस सिद्धांत को आप एक छोटी सी कथा से समझ सकते हो। एक बार एक बहुत बड़ी जेल थी, सेंट्रल जेल, जेल जानते हैं ना, उस जेल में कई सारे कैदी डाकू चोर जो होते हैं उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे। ये जगत भी एक जेल है और हम लोग उम्र कैद की सजा भोगत रहे हैं। वैसे एक जेल थी और सब लोग उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे। उम्र कैद माने जानते हैं ना, जब तक उनकी आयु है तब तक उनको जेल में रहना, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है तब तक। एक दिन उस देश के प्राइम मिनिस्टर के मन में क्या सूझी, उनका हैप्पी बर्थडे था, जन्मदिन था, तो उनके मन में आया कि आज मैं उम्र कैद की सजा भोगतने वाले सभी कैदियों के मन की इच्छा पूरी करूंगा। जाओ जेल में जाओ और बहुत बड़ा आयोजन करो, पंडाल बनाओ, मंच बनाओ। बहुत बड़ा मंच बनाया गया, वड़ा प्रधान, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर मंच पर बैठे हैं, सभी कैदी लाइन में खड़े हैं और माइक में अनाउंसमेंट किया कि आज आप लोगों की जो भी इच्छा होगी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरी करेंगे, आपको जो चाहिए वो मांग लो। देखिए अब सब लोग लाइन से वन बाय वन, एक के बाद एक आ रहे हैं, पहला व्यक्ति आया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बड़ा प्रधान ने कहा, आपको क्या चाहिए? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि यहां पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन का 10 रुपया मिलता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया आ जाएंगे सुखी हो जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपया तुझे दे देता हूं, जा। निकल गया। दूसरा व्यक्ति आया, तुम्हें क्या चाहिए? बोले यहां जेल में जिस दिन से आया हूं खिचड़ी खा खा कर थक गया हूं, कुछ भोजन पानी कुछ अच्छा परोठा इत्यादि मिल जाता तो मजा आ जाता है। बोले ठीक है, काम करो, इस कैदी के लिए जेल में एक होटल बना दो, इसको जो खाना है खाता रहेगा, ठीक है? खुश, बोले हैप्पी, चलो निकलो। तीसरा व्यक्ति आया, बोले आपको क्या चाहिए? बोले यहां पर हमें कई जगहों पर जाना पड़ता है, पहाड़ों में जाना पड़ता है, एक गाड़ी मिल जाती और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं तो आनंद आ जाता है। बोले ठीक है, इसे एक मर्सिडीज गाड़ी दे दो और इससे जितने चाहिए उतने कपड़े दे दो। चौथा व्यक्ति आया, आपको क्या चाहिए? चौथे ने कहा जो मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ। बोले मांगो, जो चाहिए दूंगा। चौथे ने कहा आप एक काम करो, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। चार लोग आए, पहले ने पैसा मांगा, दूसरे ने गाड़ी मांगा, दूसरे ने भोजन मांगा, तीसरे ने गाड़ी और कपड़ा मांगा, और चौथे ने क्या मांगा? यदि आपको देना है तो इस जेल से मुझे बाहर निकाल दो। आप बताइए चारों में से बुद्धिमान कौन है? पैसे मांगने वाला, भोजन मांगने वाला, गाड़ी और कपड़े मांगने वाला, कौन है बुद्धिमान? जेल से बाहर निकालने वाला ना। भक्तों, ठीक उसी प्रकार ये दुनिया जो है एक जेल है। इस दुनिया के अंदर हमें कितना भी गाड़ी कपड़ा पैसा कुछ भी मिल जाए, जैसे जेल में रहकर व्यक्ति को कुछ भी पैसा धन भोजन मिले सुखी नहीं हो सकता है, वैसे इस दुनिया रूपी जेल में कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया से, इस भौतिक संसार से बाहर जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी किसमें है? इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम में जाने में। और भक्तों, भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान की भक्ति। यदि वास्तव में सुखी होना है, यदि वास्तव में बुद्धिमान बनना है तो भगवान की भक्ति कीजिए। और भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो इस प्रकार नंदी जी श्राप दे रहे हैं, देने दीजिए। कल इस कथा को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए सबको प्रणाम और हरे कृष्णा।